मुझे इस लड़की के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए अरमान आस्था की ओर देखते हुए बोला, फटाफट ये खाने की थाली यहाँ से बाहर भिजवा देना, मैं अपने कमरे में किसी तरह की कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, समझे तुम? ऐसा कहकर वो अपना लैपटॉप उठाकर वहां से जाने लगा। आस्था ने अरमान की डांट सुन ली थी और पहले ही अपना सर झुका रखा था। उसने अपनी थाली और कुछ बचा हुआ खाना, जिसे वो फेंकने वाली थी, टिश्यू पेपर में लपेटकर रखा हुआ था। वो सब लेकर वो किचन की ओर जाने लगी, तभी अचानक वहां वो अरमान से टकरा गई। अरमान अपना लैपटॉप देखते हुए जा रहा था और आस्था पानी और खाना लेते हुए जा रही थी। आस्था के अरमान से टकराते ही अरमान का लैपटॉप उसके हाथ से छूट गया और आस्था के हाथ में रखा पानी का ग्लास सीधे लैपटॉप पर गिर गया। अब अरमान की आंखों से आग के अंगारे बरसने लगे थे, उसकी महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी। अरमान का गुस्सा बढ़ गया, उसने एक बार फिर चिढ़कर आस्था की बाजू को जोरों से पकड़ लिया, उसी बाजू में जहां पहले से ही आस्था को दर्द था। आस्था ने अभी तक चेक भी नहीं किया था कि उसके बाजू की क्या हालत है, लेकिन अरमान ने जैसे ही उसकी बाजू पकड़ी, उसकी जोरों से चीख निकल गई। अरमान ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानती हो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है, यू स्टूपिड सिली गर्ल, अब बताओ मैं अपनी मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा? जवाब तो मुझे, कैसे करूंगा? अब मैं अपनी मीटिंग कैसे करूंगा? हाँ, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती थी? क्या तुम्हें अकल नहीं है? तुम्हारे इस दिमाग में क्या भूसा भरा रखा है? इतना सा भी तुम सेंस ऑफ ह्यूमर यूज नहीं कर सकती हो अपना? अरमान बड़े ही गुस्से से आस्था को देखने लगा। आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उसके साथ आज तक किसी ने इतनी बदतमीजी नहीं की थी। वो हमेशा से ही सबके सामने बिंदास रहती थी, शेर की तरह, लेकिन उसे तो खुद अब सवा शेर मिल गया था। आस्था को बड़ा ही रोना आ रहा था। आस्था के आंसू देखकर अरमान के दिल पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने आस्था को तुरंत बेड पर धक्का दे दिया और कहा, यू स्टूपिड गर्ल, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ऐसा बोलकर अरमान अपने भीगे हुए लैपटॉप को लेकर जल्दी ही स्टडी रूम में चला गया। उसके लैपटॉप में मीटिंग्स की सारी डिटेल्स थीं, और वैसे तो अरमान के पास कई सारे अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप पड़े हुए थे, लेकिन मीटिंग्स की डिटेल्स उसी लैपटॉप में होने के कारण अरमान को गुस्सा आने लगा था। 2 बजे से ज्यादा समय नहीं रह गया था, केवल 4 से 5 मिनट ही बाकी थे। 4 से 5 मिनट में कैसे अरमान पूरी फाइल्स को और पूरा डेटा वापस से दूसरे लैपटॉप में क्रिएट कर पाता? अरमान को इस वक्त आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी और इसी वक्त आस्था का गला दबा दे, लेकिन फिलहाल वो स्टडी रूम में जाकर उसने फटाफट नया लैपटॉप ओपन किया और देव को फोन कर दिया। देव के पास ऑलरेडी सारा डेटा मौजूद था, उसे अब देव से एक बार फिर सारा डेटा वापस से मंगवाना था। वहीं आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव से काफी हद तक दर्द में थी। ऊपर से उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा था, उसका हाथ उठ ही नहीं रहा था। पहले भी वो पेनकिलर खाकर सो चुकी थी, लेकिन अब फिर से उसके हाथ में दर्द हो रहा था। आस्था ने जैसे तैसे वो बर्तन एक नौकर के हाथों से भिजवा दिए थे। पूरे मेंशन में 24 घंटे नौकर काम पर रहते थे। रात के अलग अलग नौकर थे और दिन में अलग अलग नौकर थे। आस्था ने उस कमरे की साफ सफाई करवाने के बाद एक तरफ बैठ गई। वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अरमान का गुस्सा, उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। आस्था ने सोचा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अरमान जैसे आदमी के अंदर कभी भी बदलाव या सुधार ला पाएंगे। हमें दादाजी से ये बातें साफ साफ बोल देनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि उन्होंने जो उस अड़ियल बदतमीज खड़ूस पोते को सुधारने का काम हमें दिया है, वो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और वो हमें यहाँ से जल्द विदा कर दें, क्योंकि हम अब यहाँ और नहीं रह सकते हैं। अगर हम यहाँ और रहेंगे तो बेशक किसी न किसी दिन हमारी जान चली जाएगी। आस्था मन ही मन में सारी बातें सोच रही थी। उसने डिसीजन ले लिया था कि अगली सुबह होते ही वो दादाजी को सारी बातें साफ साफ कह देगी और यहाँ से जाने के बारे में बोलेगी। अब आस्था ये सब सोचते हुए बेड पर सोने के लिए जाने लगी। उसने सोचा कि वो बेड पर नहीं, सोफे पर या काउच पर ही सो जाएगी। उसने तकिया उठाया, उसका हाथ बहुत जोरों से दर्द हुआ। अरमान के इतने कसकर हाथ पकड़ने की वजह से उसे तेज दर्द हुआ था। आस्था की हाथ की नस दब गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इस दर्द की वजह से उसे तकिया तक नहीं उठाया जा रहा था। आस्था ने सोचा कि उसे एक बार देखना चाहिए कि आखिरकार उसके हाथ में हुआ क्या है। आस्था को थोड़ी बहुत डॉक्टर की नॉलेज थी, जिस फील्ड में वो थी उस फील्ड में उसे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल शादी के चक्कर में पड़ने के बाद तो जैसे उसके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। लेकिन अब ज्यादा दर्द होने की वजह से आस्था को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिलहाल उसने अपना सूट उतारने के बारे में सोचा, जो पिंक कलर का सूट उसने पहन रखा था। उसकी स्लीव्स फुल थीं, जिसकी वजह से वो ये देख नहीं पा रही थी कि उसके हाथ में कहाँ हर्ट हुआ है, इसीलिए वो कुछ पहनने के लिए ढूंढने लगी। उसकी निगाहें अरमान की एक ब्लू रंग की टी शर्ट पर गई, जो कि आधी बाजू की थी। आस्था ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया और उसे बाथरूम में जाकर पहन लिया। शर्ट पहनने के बाद जैसे ही वो कमरे में आई, उसने अपने हाथ को देखना शुरू कर दिया था, और अब तो आस्था की आंखें हैरत से फैल गई थी। आस्था के हाथ पर अरमान की उंगलियों के गहरे गहरे और एकदम लाल सुर्ख निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो आस्था का खून वहीं रुक गया हो। आस्था बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसका हाथ बड़ा ही अजीब सा दिख रहा था। उन निशानों को देखकर अब आस्था को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अगर उसका ये रुका हुआ खून नसों में नहीं दौड़ा तो उसका हाथ खराब भी हो सकता था, आस्था ये रिस्क नहीं ले सकती थी। आस्था को इसमें थोड़ी सी नॉलेज थी कि अगर हाथ पर किसी तरह की कोई चोट लगे या अंदर दर्द हो तो वो बर्फ का सेक कर सकती है। आस्था ने एक नौकर को बुलाकर बर्फ मंगवाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर गई उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब आस्था परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि क्या उसे ही नीचे किचन में जाकर बर्फ लेकर आना चाहिए। एक और बात भी उसके दिमाग में थी। वो सोचने लगी कि अगर अरमान उसे रास्ते में मिल गया तो ऊपर से उसने उसकी शर्ट पहन रखी थी। आस्था को समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। आस्था ने इस वक्त अरमान की शर्ट और नीचे उस पिंक सूट के साथ का ट्राउजर ही पहन रखा था, जिसमें वो काफी ज्यादा अलग लेकिन कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। आस्था को लगा कि अब काफी देर हो चुकी है और शायद अब तक रात की ड्यूटी पर सर्वेंट्स सो गए हैं। आखिरकार कौन पूरी रात जाग सकता है। रात के 2 बज रहे थे। ये सोचते हुए आस्था धीरे धीरे अपने आप को एक दुपट्टे से अच्छे से कवर करने के बाद नीचे किचन की ओर जाने लगी। वहीं अरमान ने जब देर रात देव को फोन किया, देव सो गया था और सोचने लगा कि किसने मुझे इतनी रात को फोन किया है। लेकिन अरमान का नंबर देखने के बाद उसने जो मुंह में आया था उसे रोक लिया। वो जल्दी से फोन उठाकर कहने लगा, जी बॉस बताइए। अरमान ने बोला, एक काम करो, जापान और स्पेन वाले क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मेरे दूसरे लैपटॉप पर सेंड करो, मेरा पुराना लैपटॉप डैमेज हो गया है।
अरमान के कहने पर देव पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था और सोचने लगा कि ये सब क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लैपटॉप और वो भी अरमान सर का डैमेज नहीं हो सकता है। लेकिन मसला ये था कि देव ने उस प्रोजेक्ट की एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनाई थी, उसने सारा डेटा ऑलरेडी अरमान को दे दिया था। अरमान से कभी भी कोई गलती नहीं हुई थी और ना ही कभी उसने वापस से रिपीट किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स मांगी थी। अरमान की बातें सुनने के बाद देव को सांप सूंघ गया था, वो उसको किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाया। देव को इस तरह से चुप देखकर अरमान गुस्से से दहाड़ा, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती हैं या तुम्हें अब कम सुनना शुरू हो गया है? मुझे बार बार अपनी बातें रिपीट क्यों करनी पड़ रही हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे अपनी बातें रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अरमान ने अपने कड़क और खड़ूस आवाज में कहा। तो देव डर गया और अटकते हुए बोला, वो मैं। देव के मैं करने पर अरमान का पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो तो पहले ही आस्था की मैं से परेशान था, देव को मैं करते हुए देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो कहने लगा, देव बिहेव, ये क्या बदतमीजी है, ये किस तरह से तुम मैं कर रहे हो, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहाँ गया तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म? अरमान देव को कड़वे शब्दों में डांटने लगा। तभी देव ने जल्दी से अपना गला ठीक करते हुए बोला, बॉस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट फाइल की कोई भी कॉपी मेरे पास नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी सारी फाइल सेंड कर दी थी और उसके बाद मैंने उसकी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनाई, केवल कुछ हैंड राइटिंग फाइल्स ही पड़ी हैं, मैं वो सब आपके लैपटॉप में भेज चुका था। अरमान ने जैसे ही ये सुना, फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अचानक से उसने अपना फोन अपने कान पर से हटाकर जोरों से उसे पटक कर मार दिया था। अरमान को जब भी गुस्सा आता था, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा वो अपने फोन पर उतारता था, इसीलिए स्टॉक में उसके पास कितने सारे फोन पहले से अवेलेबल रहा करते थे। लेकिन जो फोन उसने अभी तोड़ा था उसका नंबर 308 था। वेल, फोन टूटने पर देव जो कि फोन पर बात कर रहा था वो सिर्फ हेलो हेलो बोलता रह गया था। कुछ देर तक अरमान की आवाज नहीं आई तो वो समझ चुका था कि 308 वा मोबाइल भी टूट चुका है। अरमान का गुस्सा से सर फटने को तैयार था। अपना गुस्सा उतारने के लिए वो सीधा अपने कमरे में जाने लगा। ये सब कुछ आस्था की वजह से हुआ था, ना वो उससे टकराती, ना उसका लैपटॉप खराब होता और ना ही उसकी मीटिंग इस तरह से बर्बाद होती। ये सब सोचते हुए वो जल्दी ही आस्था के पास जाने लगा। वहीं आस्था चोरी छुपके जल्दी से किचन में बर्फ लेने के लिए जा रही थी और जल्दी ही किचन में पहुंच चुकी थी। वहां जाकर उसने फ्रीजर में चेक किया कि बर्फ वहां पर अवेलेबल था या नहीं। आस्था ने जल्दी से काफी ज्यादा बर्फ इकट्ठा करके अपने एक दुपट्टे में लपेट लिया था। अरमान जैसे ही अपने कमरे में गया और उसने बेड पर आस्था को नहीं देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी। उसका दिमाग जोरों से चलने लगा। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वीर उसका दुश्मन है और वीर रायचंद डेविल किंग को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खुल्लम खुल्ला अरमान सिंघानिया उसका राइवल था, लेकिन वीर को ये नहीं पता था कि असल में उसका राइवल ही वो डेविल किंग है। अरमान को ये लग रहा था कि जरूर वीर ने आस्था को उसके खिलाफ प्लांट किया है। इस तरह से अचानक प्रियंका का शादी से भागना और फिर आस्था का शादी के लिए हाँ कह देना, ये बात वो अभी तक हजम नहीं कर पा रहा था। दादाजी ने उसे सारा सच बताने की कोशिश की थी, प्रियंका ने भी जो कुछ उसे पता था उसने बता दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन से आस्था को लेकर शक नहीं निकल रहा था। बार बार उसके दिमाग में आस्था का मासूम सा चेहरा आ रहा था। वो सोचने लगा कि जरूर वीर ने ही आस्था को उसके खिलाफ प्लांट किया है। आस्था जिस तरह से गोल गोल बातें करती है, जिस तरह से मासूम बनने की एक्टिंग करती है, ये बात अरमान को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। वो यही सोच रहा था कि वीर ने अरमान का ध्यान भटकाने के लिए आस्था का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो आस्था से सारा सच उगलवा कर रहेगा।